भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
बच्चे ही जाए। हरे कृष्णा। अति प्रसन्नता हो रही है। कुछ मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पश्चात गीतामृत के कार्यक्रम में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि गीतामृत का ये कार्यक्रम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। कुछ 2-3 ऐसे मंदिर हैं जो इस गीतामृत का जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं अपने मंदिर में, और मुझे पता ही नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा कि ये नासिक के हैं अध्यक्ष, और नासिक का जो इस्कॉन का मंदिर है वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम ये आयोजित करते हैं गीतामृत, जो कि 2 साल पहले इन्होंने चालू किया था। प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, और 2 साल बाद ये तक उनको पता था कि कौन से श्लोक तक हम पहुंचे। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 2.54 तक पहुंचे ही हैं। तो फिर एक ऑडियंस में एक भक्त आकर मुझे पूछे, गीता में 700 श्लोक है ना, आप 2 साल से शुरू किए हैं, ऐसा लग रहा है कि 7,000 श्लोक हैं गीता में। तो वो लोग ये सब जो हम गीता का पाठ करते हैं ये, और फिर एक एक श्लोक लेकर, हालांकि वहां पर अंग्रेजी में होता है, तो फिर उन्होंने इस प्रकार का परिचय इंट्रोडक्शन देने के बाद वो कहे, तो फिर आज उस गीतामृत का एक ओरिजिनल नमूना आपके सामने पेश करेंगे। और बहुत से ऐसे भक्त हैं, मंदिर हैं, जो कि हमारे नासिक इस्कॉन की गतिविधियों के बारे में बहुत अच्छी से वाकिफ हैं। तो आप लोग सब ये समझ रहे होंगे कि नासिक इस्कॉन हम लोग बस इतने से लोग आते हैं हर हफ्ते हैं, और हमको लग रहा होगा कि हमारा कॉन्ग्रीगेशन जो बाकी इतना बड़ा इस्कॉन का परिवार है उसकी तरह नहीं बढ़ रहा होगा, लेकिन सब लोग नजर टिकाए हुए हैं राधा मदन गोपाल जी और आप लोगों के ऊपर। तो बहुत आप लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। तो हम जो हमारे पिछले गीतामृत के कार्यक्रम में मेरे ख्याल 3 हफ्ते पहले हमने श्लोक लिया था अर्जुन के प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण को, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को कि जो स्थित प्रज्ञ है वो किस प्रकार की भाषा बोलता है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तो ये जो अर्जुन के प्रश्न, हमने आपको यदि याद होगा तो हमने इसके संदर्भ में ये चर्चा की थी कि अर्जुन के प्रश्न केवल बाहरी एक योगी या परिपूर्ण, जो योग में परिपूर्णता प्राप्त कर चुका है, उसके बाहरी हाव भाव के विषय में प्रश्न नहीं थे। ये प्रश्न अर्जुन के बहुत गहरे थे, जिसके अंदर एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य के आंतरिक लक्षण क्या होते हैं। जब उसे इस भौतिक संसार की सारी कामनाओं से विरक्ति हो जाती है तब वो क्या इच्छा करता है? जब इस भौतिक संसार की वार्ता कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती तब वो क्या बोलता है? तो इस प्रकार अर्जुन के ये सारे जो प्रश्न भगवान के समक्ष उन्होंने रखे, तो आज का श्लोक है, भगवान अब अपना उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते। तो अर्जुन का प्रश्न था स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ कहते हैं उस मनुष्य को या उस योगी को जो प्रभावित नहीं होता भौतिक संसार के द्वंद्वों से। तो यहां पर आप जो अंतिम लाइन है स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, कि स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं। अब भगवान उत्तर शुरू किए हैं, तो उत्तर कैसे शुरू करता है कोई व्यक्ति? जब कोई प्रश्न पूछता है, कोई पूछा प्रश्न कि मुझे फलाने व्यक्ति के बारे में पता, तो कैसे शुरू करता है कि हाँ वो फलाना व्यक्ति, ये उसके लक्षण। तो भगवान कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं जो आत्मन्य आत्मना तुष्ट, जो आत्मा में संतुष्टि लेता है, अर्थात जो आत्म संतुष्ट है। यह सबसे पहला लक्षण है स्थित प्रज्ञ मनुष्य का। तो मानो अर्जुन पूछे कि भाई आत्मा में संतुष्टि कोई व्यक्ति किस प्रकार से ले सकता है? तो फिर आगे भगवान कहते हैं हे पार्थ प्रजहाति कामान मनोगतान। प्रजहाति, ये संस्कृत का शब्द, जहाति का अर्थ होता है त्यागना और प्रजहाति का अर्थ होता है विशेष रूप से त्याग देना। किसको त्याग देना? कामनाओं को, भौतिक कामनाओं को जो विशिष्ट रूप से त्याग देता है। मनोगतान, मनोगतान का अर्थ है जो मन के द्वारा कल्पित कामनाएं होती हैं भौतिक, जब उसे प्रकृष्ट रूपेण ये योगी त्याग देता है तब वो संतुष्ट होता है अपनी आत्मा में और तब जाकर वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये आज के श्लोक का अनुवाद है लाइन बाय लाइन। लेकिन यहां पर ध्यान रखना होगा कि यह श्लोक कहा गया भगवान कृष्ण द्वारा, लेकिन इसमें जो श्री भगवान उवाच है वो किसने ऐड किया है? कोई बोल सकता है कि अब जो व्यास देव जी, संस्कृत का जो श्लोक है वो तो भगवान द्वारा कहा गया है ना, कहां से? प्रजहाति से लेके तदोच्यते तक। लेकिन ये श्री भगवान उवाच किसने ऐड किया? ऐसे थोड़ी कि भगवान ऐसे बोले अब श्री भगवान उवाच, नहीं, ये व्यासदेव जी ने ऐड किया और संजय, दोनों व्यासदेव जी और संजय। तो क्यों? श्रील प्रभुपाद जब भी कोई ऐसा श्लोक जिसमें श्री भगवान उवाच आया, श्रील प्रभुपाद तुरंत उस श्री भगवान उवाच को लेकर पहले व्याख्या की। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि क्यों श्री भगवान उवाच ऐड किया गया है ये आज के श्लोक। तो पिछले श्लोक से संबंध श्री भगवान उवाच की व्याख्या, भगवान द्वारा पार्थ नाम का प्रयोग, मन द्वारा कल्पित भौतिक कामनाओं की वजह। मन द्वारा कल्पित अर्थ है कॉन्कॉक्टेड बाय द माइंड, द मटीरियल डिजायर व्हेन दे कम, ये हमारे मन जो कपोल कल्पित जिसे बोलते हैं ना, कपोल कल्पित इच्छाएं या धारणाएं वो है। और स्थित प्रज्ञ मनुष्य की चरम स्थिति आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न थे परिपूर्ण योगी के क्या लक्षण हैं, और आज के श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से क्या है, भगवान का उत्तर। ये हर समय हम पिछले श्लोक से संबंध इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कनेक्शन पिछले श्लोक से बना रहे। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते का गैप आ जाता है, सबसे बड़ा कारण वो है। आज इस बार तो 3 हफ्ते का गैप, और दूसरा कारण है हम कलयुग के जीव हैं, तो इसलिए वो कनेक्शन बनाए रखने के लिए पिछले श्लोक से क्या संबंध। तो भगवान अब अपना उत्तर प्रारंभ किए हैं। तो श्री भगवान उवाच, भगवान शब्द की व्याख्या हमने कई बार की है, आप लोग सुने हुए हैं, जो भग को धारण किए हैं अर्थात ऐश्वर्य को जो धारण किए हैं वो है भगवान। तो व्यासदेव जी और संजय ये हम सब के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मुद्दा कि जो सब स्थित प्रज्ञों के चरम लक्ष्य हैं, क्योंकि यहां पे चर्चा किसकी हो रही है, स्थित प्रज्ञों की। तो जो बड़े बड़े योगी स्थित प्रज्ञ हैं उनके चरम लक्ष्य हैं ये भगवान जो ये श्लोक बोल रहे हैं। तो वो जो इनके चरम लक्ष्य हैं वो बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं। तो इससे ज्यादा ऑथेंटिक प्रामाणिक उत्तर और किसी का हो नहीं सकता। तो व्यासदेव जी ये हमारे सामने बहुत क्लियर कर रहे हैं कि यदि आपको योग की परिपूर्णता या अध्यात्म में लीन व्यक्ति की परिपूर्णता जाननी है तो केवल भगवान उवाच, और किसी एरे गेरे नट्टू ठहरे से मत पूछिए, भगवान से पूछिए, क्योंकि इन सब के चरम लक्ष्य भगवान है। और विशेष रूप से एक और कारण यहां पर यह है कि भगवान भौतिक कामनाओं के विषय में बता रहे हैं, तो भौतिक कामनाएं इस भौतिक संसार में लोगों के किसके संबंध में होती हैं, 6 ऐश्वर्यों के संबंध में। मटीरियल डिजायर्स आर फॉर व्हाट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, नेम स्ट्रेंथ नॉलेज ब्यूटी वेल्थ जो ये 6 ऐश्वर्य भगवान के, इसको इसके पीछे भागते हुए भौतिक कामनाएं होती हैं। तो इसलिए व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि हां यदि किसी को उन भौतिक कामनाओं से मुक्त होना है तो जो इनके स्रोत हैं उनकी सेवा में यदि कोई लगता है तो वो सर्वोच्च स्थित प्रज्ञ है। इसीलिए शुरुआत में ही श्री भगवान उवाच। अब भगवान ने आज के श्लोक में कहा है अर्जुन को पार्थ, तो ये कुंती महारानी जो कि भगवान श्री कृष्ण से आग्रह कर रही थी कि आप हस्तिनापुर में और ठहरिए, ये चित्र वो है श्रीमद् भागवत का प्रसंग, जब भगवान अब हस्तिनापुर से फिर द्वारका जा रहे हैं, सारा युद्ध समाप्त हो चुका है और कुंती महारानी अब अपनी प्रार्थनाएं, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कुंती महारानी की कि श्रील प्रभुपाद ने एक अलग पुस्तक लिखी प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती। तो इन प्रार्थनाओं में और यहां पर पार्थ जो अर्जुन का एक नाम है, प्रथा के पुत्र, प्रथा कुंती महारानी का नाम, तो प्रथा या कुंती महारानी के पुत्र, और यहां पर कुंती महारानी को भगवान याद करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन जो तुम्हारी मां, उन्होंने सारी भौतिक कामनाओं को त्याग दिया था, प्रजा हाती यदा कामा, कैसे, जब उनके पति पांडु कुंती के पति पांडु, जब उनकी मृत्यु हुई तो कुंती महारानी सती बनना चाहती थी, जो उस समय की प्रथा थी, लेकिन अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए नहीं वो रुकी, वो जीवित रही। और फिर जब युद्ध संपन्न हुआ और ये जीते सारे पांडव, पूरा राज्य मिला, पूरे पृथ्वी का राज्य मिला, पूरे पृथ्वी का राज्य मिलने के पश्चात भी कुंती महारानी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन के लिए निकल गई। तो युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन इत्यादि वो कहे कि ये हम लोग जो इतना युद्ध लड़े और जीते, ये आपके लिए। लेकिन कुंती महारानी ने दिखाया अपने उदाहरण से कि नहीं, मुझे केवल तुम्हारी सुरक्षा देखनी थी, अब तुम लोग सब सुरक्षित हो, मुझे राज्य से कोई सरोकार नहीं, मुझे ऐश्वर्य सुख समृद्धि से कोई लेना देना नहीं। तो भगवान देखिए, अर्जुन एक परिपूर्ण योगी के विषय में पूछ रहे हैं और भगवान कुंती महारानी को याद कर रहे हैं। देखिए, साधारणतः यदि मैं आपको किसी परिपूर्ण योगी के बारे में पूछूं तो तुरंत आप रामदेव बाबा के बारे में सोचेंगे, या कोई ऐसा योगी जो कि बैठा हुआ है कोई पर्वत में, गुफा में, तुरंत वो ख्याल आएगा ना। तो जैसे ही भगवान को अर्जुन सित प्रज्ञ एक परिपूर्ण योगी के लक्षण पूछ रहे हैं, तो भगवान किसको याद कर रहे हैं देखो। तो भगवान यहां पर ये पार्थ के द्वारा ये दर्शा रहे हैं कि चाहे परिपूर्णता योग में हो या कर्म में हो, एक भक्त ही परिपूर्ण है, जैसे कि कुंती महारानी। और यहां भगवान कोई ये नहीं देख रहे हैं कि वो एक स्त्री जाति में है। अब देखिए, योगी, परिपूर्ण योगी, और यहां पर एक स्त्री जाति, एक माता, उनको ध्यान में रखते हुए भगवान अर्जुन को पुकार रहे हैं, पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, जिस प्रकार से तुम्हारी माता ने सारी भौतिक कामनाओं को त्याग दिया था, ये चरम लक्षण है एक परिपूर्ण योगी का, एक स्थित प्रज्ञ का। इसलिए भगवान ने पार्थ शब्द इस्तेमाल किया। अब हम जो भगवान ने ये एक सीक्वेंस दिया है आज के श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है जो आत्मा में संतुष्टि ढूंढता है, और आत्मा में संतुष्टि ढूंढने के लिए उसे उसका मन विशुद्ध करना है। और मन विशुद्ध कैसे करेगा? जब वो सारे मनोधर्म या मन द्वारा कल्पित भौतिक कामनाओं से मुक्त होगा। आप लोगों को लग रहा होगा ये चित्र का क्या मतलब है। ये भगवद गीता का अब 15वां अध्याय, ऊर्ध्व मूल अध शाखम अश्वत्तम प्राहुर अव्ययम। भगवान ने यह सुंदर उदाहरण दिया है कि भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में अंतर क्या है। जैसे कि एक अश्वत्त वृक्ष का प्रतिबिंब किसी सरोवर में दिखता है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है। अब कौन सा असली वृक्ष है बताइए, नीचे वाला ऊपर वाला? हाँ, ऊपर वाला। और जो पानी में, जल में जो उसका प्रतिबिंब दिख रहा है वो उल्टा है, सब कुछ उस असली वृक्ष से सब कुछ उल्टा है। तो देखिए भगवान ने कितना एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार में जो कुछ है उसका ठीक उल्टा इस भौतिक संसार में दिखने को मिलता है। जैसे मैं जब फ्लाइट से लंदन से निकला तो मेरे बगल में एक व्यक्ति, मैंने अपनी बीड बैग निकाली, उसने दारू की बोतल निकाली। तुरंत मेरे को ध्यान में अश्वत्थम ब्रह्म। तो वो मुझे पूछ रहा था, उसे समझ में नहीं आया कि ये अलग प्रकार की बोतल दिख रही है, इसके आगे ये क्या है। तो उसने मुझे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यू वॉन्ट टू ट्राई। और फिर प्रभुपाद ने जैसे कहा था वैसे कहा, दिस इज एन इंटॉक्सिकेशन वेर इन यू विल स्टे हाई फॉर एवर, यू डोंट हैव टू कम डाउन, नो हैंग ओवर्स, स्टे हाई फॉर एवर। तो जैसे ही फिर कुछ भक्तों ने प्रसाद पैक कर दिया था, तो उसने सब अपना वो जो मेनू कार्ड था वो मंगाया उसने, वो ऐसे ऐसी चीजें जो हम बोल भी नहीं सकते। और यहां पर हमने अपना महाप्रसाद निकाला, तो उसके मन में ये जो भी कुछ फीडबैक बाहर निकला, फिर महाप्रसाद बाहर निकला, तो उसके मन में ये अचंभा हो रहा था कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। मतलब उसे डाउट आ रहा था पूरे फ्लाइट के टिकट के पैसे भरे कि नहीं, क्योंकि वो एयरलाइन सब खिलाते हैं आपको, वो जो एयर होस्टेस वो लोग परेशान, बाबा जी महाराज कुछ पी नहीं रहे, कुछ खा नहीं रहे, एक पीस में पहुंचेंगे ना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में भगवान कह रहे हैं कि टोटल ऑपोजिट देखने को मिलता है। आध्यात्मिक संसार में जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्रियाएं हैं, वो इस भौतिक संसार में लोग अपने लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं, और कई बार तो लिस्ट में ही नहीं होता है कि मंदिर जाना, आध्यात्मिक किसी पद्धति का पालन करना नहीं होता है ऐसा। तो खैर वो अब दूसरा ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर हम ये श्लोक और ये उदाहरण क्यों लिए, क्योंकि भगवान ने जब ये कहा, इसका बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि आप लोग समय मिले तो पढ़िए ये 15वां अध्याय का जो पहला श्लोक है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत विस्तार से लिखते हैं। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष की शाखाएं, जड़ इत्यादि सबका विश्लेषण करते हैं, लेकिन एक बहुत ही सूक्ष्म मुद्दा ये है जो आज के श्लोक से संबंधित है, कि ये जो वृक्ष दिख रहा है, इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष को जो आप देख रहे हो, उसका प्रतिबिंब जो कि उल्टा है पूरा, जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे की ओर, उल्टा पूरा, तो इसका बेसिस क्या है, प्रभुपाद पूछते हैं तात्पर्य में, कैसे दिख रहा है उल्टा, कैसे दिख रहा है, फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन इसको इसको यदि हम आपको सामने ये चित्र आपके दिख रहा है, तो मैं आपको पूछूं कि ये वृक्ष उल्टा किसके बलबूते दिख रहा है, पानी, पानी के बलबूते दिख रहा है ना, यदि पानी नहीं होता तो हमें ये प्रतिबिंब नहीं दिखता, तो पानी के बलबूते हमें दिख रहा है कि ये वृक्ष उल्टा। तो वो जो पानी है, उस पानी की तुलना श्रील प्रभुपाद ने की है भौतिक कामनाओं से। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परवर्टेड ट्री एंड द ओरिजिनल ट्री, द वॉटर इन बिटवीन। तो इसे क्या समझे, इसका इसमें अब गहरा पॉइंट क्या है, कि हम में इस भौतिक संसार में रहने और आध्यात्मिक संसार में रहने के बीच में अंतर क्या है, पानी, भौतिक कामनाएं, भौतिक कामना। और वो आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि जब वो स्थित प्रज्ञ अपने मन द्वारा कल्पित भौतिक कामनाओं को त्यागता है, तब वो आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इसलिए अब हम ये जो जल है या पानी, जो कि बहुत सूक्ष्म होता है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हर समय ये जो मन और मन की भौतिक कामना है, ये सबसे हॉट टॉपिक रहता है हमारे कृष्णा कॉन्शियस लेक्चर्स का, मटेरियल डिजायर्स एंड अनकंट्रोल्ड माइंड। तो श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारी इच्छाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि कोई भी इस भौतिक संसार का उपकरण उसे देख नहीं सकेगा। चाहे आप टेलीस्कोप लो, माइक्रोस्कोप लो, कुछ भी स्कोप लो, कोई भी, हाँ इसके अंदर ये कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता। इतने सारे ये एयरपोर्ट पे लगे रहते हैं, ये डिटेक्टर वो डिटेक्टर, ये मशीन वो मशीन, स्क्रीनिंग, लेकिन कोई ये नहीं चेक कर सकता कि आतंकवादी के मन में क्या चल रहा है। हाँ उसके पेट में क्या है, उसके शरीर के अंदर सब दिख जाएगा, लेकिन उसके मन के अंदर, इसलिए इच्छाओं को अति सूक्ष्म कहा गया, सटल। तो हमें लगता होगा कि ये इच्छाएं हमारी जो इतनी सूक्ष्म हैं, तो इतने डरने की जरूरत नहीं। श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जैसे एटॉमिक एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव एटम बॉम्ब, लेकिन एटम इतना सूक्ष्म है दिखता ही नहीं, तो देखिए उतनी सूक्ष्म एनर्जी से इतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब बन सकता है। तो हमारी जो इच्छाएं इतनी सूक्ष्म है, तो इसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई इसको डरने की बात नहीं। कोई अगर बहुत स्थूल चीज होगी, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने ये कॉन्क्रीट जंगल देखा। क्या देखा? कॉन्क्रीट जंगल। और प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि ये एक एक इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा किया है, इसमें से एक एक वस्तु, एक एक बिल्डिंग, जो भी कुछ हुआ है, ये कहां से शुरुआत इसकी हुई? भौतिक इच्छा है कि नहीं? अब ये तो नहीं कि ये सब भगवान ब्रह्मा जी को बोले कि इस प्रकार से बनाना। ब्रह्मा जी ने तो खाली सृष्टि बनाई और उसका इंग्रेडिएंट्स इस सृष्टि में रख दिए, और हम सारे मनुष्य इकट्ठा होकर ये बड़ी बड़ी इमारतें, फिर क्या क्या, पूरा बड़ा बड़ा साम्राज्य, ये सब खड़ा कर रखा है हमने। और ये सब की शुरुआत कहां से हुई? प्रभुपाद ने कहा भौतिक इच्छा, जो कि अंदर एक इच्छा पनपी। जैसे आप देखिए कि ये जितने श्रील प्रभुपाद एक जगह थे न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद ने देखा एक बच्चों के खेलने का मैदान था, और वहां पर लिखा हुआ था चिल्ड्रंस फैंटेसी लैंड, और उसके ठीक सामने ये सारी इमारतें। तो प्रभुपाद ने लिखा एंड दिस इज एडल्ट्स फैंटेसी लैंड। तो प्रभुपाद ये कहना चाहते थे कि कोई व्यक्ति अपनी एक इच्छा को पूरी करने के लिए, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में, भौतिक इच्छा की बात चल रही है, कि एक भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए वो कितने अलग अलग प्रकार के सूत्रों का उत्पादन करता है। जैसे कि मैं हाल ही में एक मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसके अंदर बताया गया था कि कैसे ये जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, ये एक किसी की इच्छा होती है, उस इच्छा को कैसे और 100 इच्छा से जोड़ें ताकि उनका प्रोडक्ट बिके, और उस 100 इच्छा के उत्पादन के लिए कैसे इकोनॉमी को बढ़ाएं, और कैसे इतने सारे फिर लेबर उसके अंदर लगेंगे, और उसकी शुरुआत कहां से होती है? बस हम उसकी चर्चा करेंगे, कैसे मन उसको विस्तार करता है एक इच्छा को। तो श्रील प्रभुपाद ये कह रहे थे कि ये जो सटल माइंड है हमारा वो इस सब से उत्पादन करता है। तो ये हैं एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए सोक्रेटिस, और इनके जीवन की घटना है कि ये बहुत ही सादा जीवन जीते थे, एकदम जैसे कोई विरक्ति का जीवन हो, कोई योगी का वैरागी का जीवन हो। ये बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे ये, और श्रील प्रभुपाद भी कहे कि बहुत से इनके जो टीचिंग्स अपने वैदिक टीचिंग्स के समान थे। तो सोक्रेटिस जो कि इतना सादा जीवन जीने वाले, एक बार एक व्यक्ति ने इनको देखा कि किसी शॉपिंग मॉल में ये खड़े एक कागज में लिस्ट बना रहे। तो उन्होंने पूछा कि एक तो शॉपिंग मॉल में आप और ये क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने बताया कि देखो मैं देख रहा हूं लोग क्या क्या जाकर खरीद रहे हैं उधर से, कोई जूता खरीद रहा है, कोई जींस पैंट खरीद रहा है, कोई टी शर्ट खरीद रहा है, कोई ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, तो मैं सब लिस्ट बना रहा हूं। कितना लंबा चौड़ा लिस्ट हो रहा था वो, मतलब लेकिन क्यों बना रहे हैं आप? उन्होंने कहा आई एम मेकिंग दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आई डू नॉट नीड इन माई लाइफ। तो उनका लिस्ट उन्होंने निकाला, थिंग्स विच ही डिड नॉट नीड इन हिज लाइफ वॉज सो बिग अगेंस्ट द थिंग्स विच ही एक्चुअली नीडेड फॉर हिज सर्वाइवल। तो यदि हम भी जाएं शॉपिंग मॉल में, क्यों? लिस्ट ऐसी निकालने के लिए कि आजकल लोग वहां पर इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं कि वहां पर लोग कोई अंदर घुसता है तो उसको दूसरी ओर से निकलने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। और क्या बेच रहे हैं? खाली ये हमारी भौतिक कामनाओं की तुष्टि करने के लिए, बस और कुछ नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य उसका खड़ा कर रखा है। तो मन की तुलना एक सिक्के से की गई। क्यों सिक्के से की गई है? जैसे सिक्का उसके दो बाजू होते हैं, वैसे ही मन जो है उसके दो बाजू हैं। एक और उदाहरण दिया गया है कि ये मन जो हमारा एक चाबी के समान है। जैसे चाबी ताले को बंद भी करती है और वही चाबी ताले को खोलती भी, ये नहीं कि खोलने के लिए दूसरी चाबी लानी पड़ेगी, बंद करने के लिए दूसरी चाबी, दोनों खोलने बंद करने के लिए एक ही चाबी। तो मन भी हमारा, इसलिए वो प्रसिद्ध श्लोक है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। यही मन हमारा बंधन का कारण बन सकता है और यही मन हमारे मुक्ति का कारण बन सकता है। तो ये एक और उदाहरण, जैसे कि द्वार, यही द्वार है जिससे आप लोग अंदर आए, और बाहर जाने के लिए कहां से जाएंगे? यही द्वार से जाएंगे, है ना? ज्यादा उड़ जाता है, लेट हो जाता है, तो फिर वही द्वार की तरफ नजर जाती है। जैसे बंबई की लोकल ट्रेन है, एक ही द्वार है, जब ट्रेन में घुसना होता है तो वो द्वार लगता है कि कब अंदर घुसें द्वार के अंदर, और जब स्टेशन आ जाता है तो कब यहां से बाहर मुक्ति हो। तो वैसे ही ये हमारा मन दो प्रकार से काम करता है। तो अब भगवान ने ये जो कहा है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि मन धर्म द्वारा ये इच्छाएं जो पैदा होती हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं। एक रिसर्च निकाली गई थी कि ये जो हमारा ब्रेन, इसके अंदर जो डेटा है, डेटा ये अगर किसी कंप्यूटर में पूरा डेटा निकालने जाएं तो इतना हार्ड ड्राइव मिलेगा ही नहीं। जैसे होता है ना जीबी, फिर टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, उसके भी ऊपर आजकल निकल रहे हैं। तो ऐसा कोई हार्ड ड्राइव बना ही नहीं पाएगा कि इसका पूरा डेटा उसके अंदर डाउनलोड कर सके। तो ये सब कामनाएं हमारे मन में अलग अलग प्रकार की, और उन सब का इतने जन्मों से ये जो मन को लेकर हम इस भौतिक संसार में घूम रहे हैं, ये अलग अलग जन्मों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उस जन्म में हमने क्या खाया, सोया, पिया, देखा, वो सब का दूसरे जन्म के साथ कॉम्बिनेशन, उसका तीसरे जन्म के साथ कॉम्बिनेशन, चौथे जन्म के साथ, कितने ऐसे जन्म और सबका कॉम्बिनेशन लेके अब हम खड़े इधर। और फिर जब माला करते हैं तो हमको लगता है कितना माला डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? हमने बनाया इतना डिफिकल्ट, एक के बाद एक के बाद एक घुसा रहे हैं, एक एक इच्छा मन के अंदर इतने जन्मों से जो घुसा है। तो हम अब कारण देखेंगे कि ये भौतिक कामनाओं की वजह क्या होती है इस भौतिक संसार में। तो सबसे पहले पूर्व जन्म के संस्कार एवं पूर्व की भौतिक कामनाएं। जैसे मान लीजिए कि आपको इच्छा हुई कि आज गाजर का हलवा खाना है, एक इच्छा हुई गाजर का हलवा खाना, तो जब ये इच्छा हुई तो ये इच्छा की वजह क्या थी? यदि हम ढूंढें ये एक इच्छा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मेरे गाजर का हलवा खाने की जो इच्छा, इसके पीछे कितने कारण हो सकते हैं? एक तो गाजर होनी चाहिए, है ना, कोई गाजर का हलवा बनाने वाला होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, अग्नि होनी चाहिए। ये सब तो ठीक है, ये सब एक साथ लाएगा कौन? ये मन जो शरीर को बोलेगा कि ये सबको एक साथ लाओ, बनाओ वगैरह। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, हम क्यों गाजर का हलवा ही इच्छा किए, बैंगन का हलवा क्यों नहीं? क्यों ऐसी भी इच्छा क्यों नहीं हुई बैंगन का हलवा खाना है? हाँ, किसी ने खाया बैंगन का हलवा? बैंगन हलवा वो है ना, वो सर्कस में जाता है एक व्यक्ति, उधर देखता है 5 पैसे में गाजर हलवा, अंदर जाता है रस्सी से गाजर लटकी हुई, 5 पैसा भरो हलवा। तो क्यों गाजर का हलवा हमें इच्छा होती? क्योंकि हमने पहले वो खाया हुआ है, गाजर का हलवा हमने पहले खाया है। तो पूर्व इंद्रिय भोग का जो इंप्रेशन है वो हमें बार बार ऊपर आता रहता, ऊपर आता रहता वो, तो वो उसकी साइकिल चलती रहती है। और ऐसे हमने कितने अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग किए हैं, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग के वजह से हमारे अंदर इतने सारी इच्छाएं सब सबकॉन्शियसली सुप्त अवस्था में स्टोर्ड है। और यदि सामने विषय वस्तु सेंस ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो मन क्या करता है, 10 करोड़ जन्म पहले कोई इच्छा हमने की थी उसको गोडाउन से बाहर निकाल के लाता है, ये ले, याद है? याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूं। मन ये बोलता है, इसको तूने ऐसे भोगा था, ऐसे इसमें आस्वादन लिया था, ऐसे इसमें रस लिया था, ये अब ढूंढ इसको कहां पर मिलता है। तो फिर वो खड़ा होता है, ढूंढता है, कहां इच्छा अंदर हुई, वो मन उसको खड़ा करता है, ढूंढ, देख, सुन, पूछ, पता कर, फिर उसके सारे कार्यक्रम चालू होते हैं। फिर उसके कार्यक्रम पूरे करने के लिए वो एक साम्राज्य खड़ा करता है। तो शुरुआत कहां से हुआ? गोडाउन से एक एक्सपायर्ड डिजायर लेके आया वो मन, 10 करोड़ साल पुराना, उसको पूरा करने के लिए। तो पूर्व जन्म के संस्कार एवं पूर्व की भौतिक कामनाएं, ये सबसे पहली वजह। दूसरी वजह, अब वर्तमान इंद्रिय भोग जो चल रहा है, और वर्तमान इंद्रिय भोग जो है हमारा, वो क्या करता है कि उस इंद्रिय भोग की क्रिया के साथ एक इच्छा का इंप्रेशन छोड़ के जाता है फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए। तो जैसे आजकल वर्तमान में जो नए नए विषय वस्तु मनुष्य उत्पादन कर रहा है, तो उन विषय वस्तु के उत्पादन के वजह से जो कभी उसे पहले इच्छा नहीं हुई थी, अब वो इच्छा शुरू हो। जैसे मैं लंदन में एक परिवार, वहां पर उनके बच्चों से बात कर रहा था, तो वो लंदन में पैदा हुए, हालांकि हैं भारतीय लेकिन लंदन में पैदा हुए। तो मैंने पूछा कि आप क्या स्कूल में क्या पढ़ते हो, क्या करते हो? तो बताया स्कूल उल में क्या करते हैं, फिर खेलने के लिए एक्सबॉक्स। मैंने कहा ये क्या होता है? तो लेके रहा है वीडियो गेम इतना बड़ा बड़ा, और स्क्रीन पे लगाया है, कोई चाकू छुरी से मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो मेरे को पूछे, आप क्या खेलते थे? मैंने कहा गिल्ली डांडू। क्या समझ में नहीं आया, ये क्या होता? मैंने कहा इतनी सी गिल्ली होती है और एक लकड़ी होती है, उठाओ मारो। बोले ये कोई गेम हुआ? मैंने कहा खेलोगे तो पता लगेगा। फिर और क्या खेलते थे? घोटी। कंचे। तो अब हम जब बचपन में थे तो वो इंद्रिय भोग वर्तमान था हमारा, है ना? लेकिन अभी साइंस ने ये वीडियो गेम उत्पादन करके दे दिया, तो अभी के बच्चों के अंदर वही गिल्ली डांडू का संस्कार किसी जन्म से होगा, लेकिन उसको अब वीडियो गेम में खेलेगा वो, हाँ, वीडियो गेम में गिल्ली डांडू खेलेगा। तो इसमें क्या हो गया, अब ऐड हो गया। वहां पर वो लोग यही करते हैं, वर्चुअल बॉक्सिंग, वर्चुअल टेनिस, वर्चुअल फार्मिंग भी होता है, वर्चुअल फार्मिंग। वर्चुअल फार्मिंग मतलब सब स्क्रीन पे, क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो स्क्रीन पे फार्मिंग कर रहे हैं आप, बीज डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और सब वो स्क्रीन में उग रहा है। लेकिन जब भूख लगती है तो जो असली किसान उगा रहा है उसके पास जाके मांगना पड़ता है। तो वर्तमान इंद्रिय भोग एक और वजह, वो कल्पित इच्छाओं का। ये जो असंख्य विषय वस्तुएं, तो वर्तमान के साथ और असंख्य विषय वस्तुएं जो उत्पादन हो रहा है उसके वजह से, जैसे हमने वीडियो गेम का उदाहरण दिया, सेल फोन का उदाहरण दिया, गाड़ियों का उदाहरण, जो भी कुछ है, तो ये और हमारे कामनाओं को बढ़ाती हैं। ये एक बहुत ही विशेष एक वजह बताई गई है नीति शास्त्र में, कि जो हमारा मन है ये कभी सोता नहीं, ऐसा वॉचमैन है कि ये कभी सोता नहीं, कभी नींद नहीं आती इसको। कि जब हम जगे हुए हैं तो मन हर समय ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, यही चाहिए, ये मन हर समय इच्छाओं को लाता रहता है, लाता रहता है, पेश करता रहता है हमारे सामने। और जब हम सो जाते हैं, शरीर पूरा रात को सोया हुआ है, तो मन फिर स्वप्न के रूप में, मन फिर भी एक्टिव है, वो कह रहा है कि तू सो जा, लेकिन तेरे को मैं सपने दिखाऊंगा जो तुझे सुबह उठ के पूरे करने। तो हमको सुला देता है लेकिन फिर सपने दिखाता है, फिर बाद में अलार्म बजती है तो फिर पता लगता है कि अरे वो तो सपना ही था, मैं तो वही स्टेनोग्राफर क्लर्क ही हूं, सपने में तो मैं कहां पहुंच गया था, यूएस का प्रेसिडेंट बन गया था। तो हर समय मान लीजिए कि जैसे कि कोई छोटा बालक होता है, इतनी मस्तियां करता है, देखा था मैंने बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे, इतनी मस्तियां, कभी ये पटक दिया वो पटक दिया, ये मस्तियां वो मस्तियां, और वो माता पिता इतने परेशान, केवल उनकी एक ही कामना रहती है कब ये सोए, कब ये सोए, ताकि हम शांति से कुछ हमारा बाकी का काम कर सके। तो मान लो कि ऐसा मस्तीखोर बच्चा कभी सो ही नहीं, 24 घंटा चल रहा है उसका रेडियो शो, तो ये मन है हमारा, 24 आवर्स इसका शो चालू रहता है, इसलिए ये एक वजह। फिर मन का विस्तारणीय स्वरूप, जैसे हमने कहा ये मार्केटिंग वाले कहते क्या है कि एक इच्छा, ये आर्टिकल में पढ़ रहा था कि बड़ा एक अमेरिकन शॉपिंग मॉल है वॉलमार्ट करके, तो वहां के एक सेल्समैन को अवार्ड मिला, और उसको अवार्ड किस लिए मिला, क्योंकि उसने एक कस्टमर को इतनी सारे आइटम्स बेचे उस वॉलमार्ट के, और बड़े बड़े कॉस्टली आइटम्स बेचे। क्या क्या बेचा? एक पिकअप ट्रक, एक फिशिंग बोट और एक फिशिंग रॉड। तो जब उसको अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया और उसको पूछा कि कैसे तुमने एक कस्टमर को इतने आइटम्स बेचे, तो उसने फिर रहस्य रिवील किया। उसने कहा ये कस्टमर एक्चुअली आया था, उसको एक एस्प्रिन चाहिए था, सरदर्द हो रहा था, उसको एस्प्रिन चाहिए था। तो मैंने उसको बोला कि सरदर्द को दूर करने के लिए व्हाई डोंट यू गो फिशिंग फॉर अ चेंज, खुली हवा, फिशिंग करोगे तो मन तुम्हारा कहीं और जाएगा, तो सरदर्द से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो इसने बोला कि मुझे फिशिंग, मेरे पास फिशिंग रॉड नहीं। बोला है हमारे पास है ना, लेकिन वो फिशिंग कैसे करते हैं? तो बोला कि फिशिंग आप जो जो भी नदी होगी सरोवर उसके बीच में जाके करो, तो उसके लिए हमारे पास फिशिंग बोट भी है। तो उससे फिशिंग बोट उसने खरीद ली। फिर बोला ये इतनी बड़ी फिशिंग बोट तुम घर कैसे लेके जाओगे, तो तुमको पिकअप ट्रक भी चाहिए, तो पिकअप ट्रक भी बेच दिया उसको। तो बेचारा आया था एक एस्प्रिन लेने के लिए, और वो गया ये सब लेके। ये वहां पर ऐसी सच में वो लोग इस प्रकार से सब डिस्प्ले करके रखते हैं और चीजें रखते हैं कि ताकि एक आइटम आप खरीदे उसके बगल अच्छा ये भी, अच्छा ये भी, अच्छा ये भी। दे मेक श्योर दैट यू एम्प्टी योर पॉकेट। ये मन भी वैसा ही है कि एक इच्छा इसके अंदर जाती है। वो नीति का प्रसिद्ध श्लोक है, जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि शास्त्रे ज्ञानम विस्तार वस्तु शक्तितः। ये चार उदाहरण दिए गए हैं कि जले तैलम, जल में एक बूंद आप तेल डाल दो, तो तेल का एक बूंद जल के संपर्क में आकर विस्तारित हो जाता है, पूरा जो जल है वो तैलम जैसा दिखता है ना। वैसे ही दूसरा उदाहरण है खले गुह्यम, एक गुह्य बात आप एक खल को बोल दो वो विस्तार कर देता उसका, सब बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बन जाता है। तो खल, अगर आपको रहस्य को विस्तारित करना है तो उसको खल को बोल दो, खल मतलब क्रूकेड पर्सन। इफ यू वांट टू एक्सपैंड अ सीक्रेट टेल टू अ क्रूकेड पर्सन, ही विल एक्सपैंड। इफ यू वांट टू एक्सपैंड ऑयल, जस्ट पुट वन ड्रॉप इन वॉटर एंड यू विल फाइंड इट एक्सपैंडेड। तीसरा उदाहरण पात्रे दानम, आप यदि दान आपका विस्तारित करना चाहते हैं तो योग्य व्यक्ति को दान दो, तो वो आपका दान विस्तारित हो जाएगा, जन्माष्टमी जैसे आ रही है ना। तो यदि आपको आपका दान विस्तारित करना है तो राधा मदन गोपाल जी जो विश्वरूप दिखा सकते हैं अपना। तो ये तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण शास्त्र ज्ञानम, कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति या जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है उसके संपर्क में जब शास्त्र आता है तो शास्त्र का विद्धार उद्धार होता है या विस्तारित होता है शास्त्र। आप लोग लगाओ कितने अच्छे अच्छे उदाहरण है। फिर उसके बाद में लास्ट में कहा गया है वैसे ही एक इच्छा मन के संपर्क में आती है तो मन उसको इतना बड़ा चौड़ा कर देता है। वो है ना भगवद गीता फैल गई वो स्टोरी, एक भगवत गीता को पढ़ने के लिए वो चूहा जो उसका गमछा काट रहा था, बिल्ली खरीद ली उसने, बिल्ली को पालने के लिए गाय ले ली, गाय का देखभाल करने के लिए शादी कर ली, और फिर गुरुजी आए तो भगवत गीता फैल गई, गुरुजी क्या करूं। गुरुजी पूछे अरे मैंने तो तेरे को भगवत गीता बोलने पढ़ने के लिए छोड़ा था अकेला, ये सब क्या तुमने इतना बड़ा संसार खोल लिया इधर। तो बोला गुरुजी क्या करूं भगवत गीता फैल गई। तो ये मन हमारा विस्तारणीय एक्सपेंसिव नेचर ऑफ द माइंड। और फिर अंत में अर्जुन के द्वारा दिए गए चार कारण, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा कि ये मेरा मन चंचल है, पागल है, बलवान है और हठीला। सोचो ये सब का कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। चंचलता, पागलपन, उसके अंदर शक्ति भी है और हठीलापन, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट। तो ये सब कौन बोल रहा है? अर्जुन, वो भी 5000 वर्ष पहले, वो भी कृष्ण के सामने, जो कृष्ण का इतना सानिध्य प्राप्त किए हैं। तो सोचिए हमारी क्या हालत है इस कलयुग में। इसलिए शास्त्र पर आधारित कुछ उपाय। सबसे पहले भगवान ने जब वो श्लोक सुना तो भगवान तुरंत अर्जुन से कहे कि असंशयम तो महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, बिना संशय के जो कुछ तुमने कहा सही है, ये चंचल मन, पागल, बलवान, दृढ़म, जो भी कुछ, लेकिन नियमित अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजों से तुम अपने इस चंचल, पागल, बलवान, दृढ़म मन को कंट्रोल में ला सकते। तो देखिए श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या दिया, ये दो चीजें, अभ्यास किसका, चैंटिंग हरे कृष्ण, हियरिंग भागवतम, भगवत गीता, ये अभ्यास है। और फिर वैराग्य क्या है, जो चार नियम। तो एग्जैक्टली जो भगवान कृष्ण ने उपाय दिया इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए, वो श्रील प्रभुपाद ने इन दो विधियों से दे दिया, चैंटिंग हरे कृष्ण एंड फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। और तीसरा उपाय, सादा एवं शुद्ध जीवन। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने हमें एक लाइफस्टाइल दिया जीने का, क्या है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वो लाइफस्टाइल। और अंत में हमारे सत्संग में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि बाकी ऊपर के जो तीन हैं वो सत्संग में ही हम कर पाएंगे। तो यदि सत्संग नहीं है हमारे जीवन में तो बाकी के जो तीन हैं वो नहीं हो पाएंगे, और यदि वो नहीं हो पाएंगे तो हमारा जो मन है वो हर समय कल्पित भौतिक इच्छाओं को पैदा करेगा, और वो भौतिक इच्छाओं के वजह से हम कभी आत्मा में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिसके वजह से स्थित प्रज्ञ की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए भगवद गीता के अनुसार हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर हमारा मन है और मन के ऊपर हमारी बुद्धि। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धि के सहारे, ये शरीर रूपी रथ का उदाहरण हम बहुत बार सुने हैं, कि बुद्धि के सहारे अपने मन को नियंत्रण में लाओ और मन फिर इंद्रियों को नियंत्रण में लाएगा। और ये श्वेत श्वेतारा उपनिषद का प्रसिद्ध उदाहरण है, ये जो हमारा शरीर है वो एक रथ के समान है जिसमें पांच इंद्रियां जो हैं वो पांच घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी और आत्मा इसमें यात्री है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताई गई है कि वो लगाम, घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए लगाम, और वो लगाम को कंट्रोल करता है सारथी। और यहां पर अर्जुन के सारथी कौन बने हैं? साक्षात भगवान। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं केवल तुम्हारे इस रथ का सारथी नहीं बल्कि तुम्हारे मनोरथ का भी मैं सारथी हूं। होता ना एक मनोरथ, मैं तुम्हारे मनोरथ का भी सारथी हूं। तो यदि हम भगवद गीता को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण को अपने शरीर रूपी रथ या मन रूपी रथ के लगाम दे रहे हैं उनके हाथ में, और यदि उनके हाथ में हमारे मन रूपी शरीर रूपी रथ की लगाम है तो फिर हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और वो हम कैसे दे पाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब भी हम बीड बैग उठाकर माला कर रहे हैं या बीड बैग नहीं भी उठाकर तब भी माला कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ये लगाम हम पार्थ सारथी के हाथ में दे रहे हैं। इसलिए अंत में भगवान ने आज के श्लोक में ये कहा है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य की चरम स्थिति है आत्मा में संतुष्टि। तो जब हम इस स्थिति को प्राप्त करेंगे, आत्मा में अपनी संतुष्टि ढूंढेंगे, संतुष्टि सभी ढूंढ रहे हैं लेकिन आत्मा में संतुष्टि ढूंढना ये है लक्षण स्थित प्रज्ञ मनुष्य का। और यही भगवान अपने उत्तर के प्रारंभ में अब अर्जुन को कहे हैं आज के श्लोक में कि आत्मा में जो संतुष्टि ढूंढता है वो है स्थित प्रज्ञ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? परिपूर्ण योगी, नहीं देखिए भगवान, एक तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि भगवान त्रिकालज्ञ है और ये नहीं, कुंती महारानी का त्याग केवल बाद में नहीं देखा गया था, कुंती महारानी का त्याग उनके बचपन से देखा गया था। ये तो हम कुंती महारानी का पूरे जीवन का उदाहरण दे रहे हैं लेकिन भगवान उस समय जो अर्जुन को कुंती महारानी का उदाहरण दे रहे हैं तो वो कुंती महारानी जो बचपन से उनके जो परवरिश हुई वो उस प्रकार से हुई थी कि हर समय उनके जीवन में त्याग 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 वही सब हो रहा था। और जब आचार्य कुंती महारानी का उदाहरण, जैसे कि ये पार्थ जो भगवान ने नाम उच्चारण किया है, ये हमारे आचार्यों ने इसको टीका कर बताया, तो वो कुंती महारानी के पूरा जीवन कर। और एक बात ध्यान में रखिए कि भगवद गीता ये नहीं कि केवल 5000 साल पहले बोली गई थी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आई हैड स्पोकन द सेम नॉलेज टू विवस्वान द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन सिंस टाइम इमेमोरियल, इट्स एन इटर्नल नॉलेज। अनाउंसमेंट सर,
हरे कृष्णा। जैसे हर साल हमारे नासिक मंदिर में भक्ति शास्त्री एग्जाम होती है, उसी प्रकार से आने वाले साल की जो भक्ति शास्त्री परीक्षा है, एग्जाम है, वो 8 और 9 अक्टूबर पे होगी। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि जो भक्त काउंसलिंग मीटिंग अटेंड कर रहे 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने तक, वही अपना नाम अपने काउंसलर्स के पास दे सकते हैं ताकि वो इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सके। और आने वाले 29 तारीख को, ऐसे आने वाले 22 तारीख को हमारे मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो ये बहुत बड़ा उत्सव होता है, हमारे मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो जिसको भी इसमें कोई भी सेवा करना है, आपका योगदान देना है, तो हमारा यहाँ पे अकाउंट स्टॉल होता है बाहर, जैसे आप प्रसाद के लिए जाओगे तो वहाँ पे आप आपका पूछताछ कर सकते हैं, तो आपका योगदान आप वहाँ पे दे सकते हैं। और आने वाले 29 तारीख को हमारे मंदिर में श्रीमान शिक्षाश्रम प्रभु ये भगवद गीता द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ये 6 दिन का कोर्स लेंगे। ये कोर्स शाम को 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक रहेगा। इसमें 6 विषयों के ऊपर चर्चा होगी, सर्च फॉर हैप्पीनेस, हु एम आई, डज गॉड एग्जिस्ट, वन गॉड और मेनी गॉड, वाई डू बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, और कंप्लीट साइंस एंड परफेक्शन ऑफ योगा। तो ये अंग्रेजी में वगैरह काफी सारे कॉर्पोरेट लोग इसके लिए आएंगे, तो जो भी लोगों को इसके लिए नाम देना है, आपके परिवार वालों को बुलाना है, आपके दोस्तों को बुलाना है, तो कार्यक्रम के पश्चात आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी भक्त आज के हमारे बुधवार कार्यक्रम में पहली बार आए हैं, उनको हम निवेदन करते हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाइए। जो भी भक्त आज के बुधवार कार्यक्रम में पहली बार आए हैं, केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका कीमती समय निकाल के हमारे इस मंदिर में पधारे हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, गौरिताय और श्री प्रभुपाद जी और सारे वैष्णवों से कि आज के शाम आपकी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत रहे। हम वैष्णव पद्धति से 3 बार हरि बोल बोल के इनका स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृपया अपने जगह पे बैठ जाइए।